ओम शांति। आज का जो विषय है बड़ा गंभीर है। जब हम देखते हैं बाबा ने हमें चार सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चारों में संस्कार कहाँ है? संस्कार सब्जेक्ट है क्या? है? बताओ, हाथ उठाओ, संस्कार का है। बाबा ने तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। धारणा माना दिव्य गुणों की धारणा, फिर संस्कार कहाँ है? संस्कार तो है ही नहीं है, है? संस्कार कहाँ है? खड़े होके बोलो तो कौन कह रहे? सेवा को प्रैक्टिकल में लाएंगे तो संस्कार आएंगे। अच्छा बैठिए, धारणा को प्रैक्टिकल में लाएंगे तो संस्कार आएंगे। और माताएं इन्हें है, संस्कार सब्जेक्ट है हमारा। वास्तव में हम लोग ज्ञान तो सुनते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, सुन सुन के खूब झूमते हैं, कहते वाह बाबा की मुरली बहुत अच्छी थी, आज तो बाबा ने ये बहुत अच्छा बताया। तो आत्मा का ज्ञान भी है, परमात्मा का भी है, सृष्टि चक्र का भी है, सेवा कैसे करनी है। लेकिन इस सारे ज्ञान में मैं कहाँ हूं, मेरा क्या रोल है? क्या कभी हमने ये सोचा? ज्ञान भी सुन लेते हैं, योग भी 5-10 मिनट तो कर ही लेते हैं शायद, नहीं? हाँ, अधिकतर तो यही कहते हैं, योग में बैठते हैं, बहुत संकल्प चलते हैं, योग में बैठते हैं, योग लगता नहीं है। कोई कोई तो बाबा के कमरे में जाते हैं, बस 2-4 मिनट बैठते हैं, फिर उठ के आ जाते हैं, उठक बैठक। वास्तव में जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, ये सारा ज्ञान दिया ही हमारे संस्कारों के लिए है। क्योंकि आत्मा में 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन और बुद्धि ऐसे हैं जो फट फट कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी बैठे हैं ना, छोड़ दें अगर तो मन में कई संकल्प, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, उसको कहना है, उसको मिलना है, अनेक संकल्प आ रहे हैं, अनेक जा रहे हैं। फिर बुद्धि, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए, वैसे कहना चाहिए। जजमेंट इतना जल्दी 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 देती है, बात नहीं पूछो। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है मेरे मन में और बुद्धि में, ये सब अंदर में रिकॉर्ड हो रहा है। ये जो रिकॉर्डिंग है, इसी को हम संस्कार कहते हैं। जिसको साधारण तरीके से हम कहते हैं कि जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। हम अपने को सुस्त बना लेते हैं तो सुस्त पड़े हुए हैं, उठ गए, बैठ गए, गए नहीं गए, नहीं गए, अपना संस्कार बना लेते हैं। जिसको आम भाषा में हम कहते हैं मेरा स्वभाव, मेरी आदत। मनुष्य के दुखों का कारण मनुष्य के अपने संस्कार हैं। अब मान लो किसी के संस्कार खराब हैं, तेज संस्कार हैं, कहते हैं ना भाई ये तो बहुत तेज तरार व्यक्ति है, ये व्यक्ति है ना अच्छा नहीं है। तो क्या अच्छा नहीं है? उसका स्वभाव संस्कार अच्छा नहीं है। किसी को खाने का गलत स्वभाव है, किसी का सोने का गलत स्वभाव है, किसी का व्यवहार में आने का बड़ा छोटा ये सब गलत है। तो ये जो हमारे प्रतिदिन की हर पल की दिनचर्या है, ये मेरे संस्कार हैं। ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञान दिया है, अब किसी को कहेंगे आइए आके आप इस विषय पे बोलो, कहेंगे बहन जी बिना तैयारी के तो नहीं, आप एक घंटा पहले बता दे, मैं तैयार करके आऊंगा। क्योंकि ज्ञान का संस्कार नहीं है। योग में भी बैठते हैं या तो कुछ और सोचते रहेंगे, यहां बैठे हैं, बॉम्बे गए, दिल्ली गए, अमेरिका गए, सब जगह घूम के आ गए। मन को एकाग्र करने का संस्कार नहीं है। तो पहले आज हम अपने मन से पूछें, सचमुच मैं अपने संस्कारों का परिवर्तन चाहती हूं? मोटा मोटा परिवर्तन तो हमारा दो चार दिन में हो जाता है, जब हम शुरू शुरू में आते हैं ना बाबा के घर में, कोर्स किया, किसी का तो कोर्स करते पहले दूसरे दिन से ही परिवर्तन हो जाता है, किसी का कोर्स के बाद 5-6 दिन में होता है, किसी का 10-15 दिन में होता है, किसी का तो फिर मधुबन आते हैं देखते हैं तो परिवर्तन होता है। तो मोटा मोटा परिवर्तन हमारा हो जाता है, खान पान शुद्ध हो गया, पवित्रता को धारण कर लिया, रोज सेंटर पर आना है शुरू कर दिया, ये हमारा परिवर्तन है। लेकिन अंदर गहराई से जो हमारा परिवर्तन है, मैं सदा खुश रहूं, मेरे से सदा खुश रहे, मैं सदा दूसरों से दुआएं लेती रहूं और दूसरों को दुआएं देती रहूं, मैं सबको रिस्पेक्ट दूं और मुझे रिस्पेक्ट मिलता रहे, ये जो परिवर्तन है, चाहते तो हम हैं, हम वहां गए हमारी तो इंसल्ट कर दी, हमें तो पूछा ही नहीं, मैं वहां गई उसने चाय के लिए भी नहीं पूछा, मैंने इतना काम किया उसने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मेरा इतना काम था उसने मुझे कॉपरेट नहीं किया। आप देखो हर घड़ी मेरे अंदर क्या है, कंप्लेंट्स, शिकायत, ये बहन ऐसी है, ये भाई ऐसा है, शिकायत। बहन भाई की तो बात छोड़ो, भगवान भी मेरी सुनता नहीं है, मुझे दिया ही क्या है। हमारे संस्कार कैसे हैं? ज्ञान और योग सीखने का अर्थ ही है अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना। परिवर्तन शब्द कहते हैं तो शायद थोड़ा कठिन लगता है कि भाई मेरी तो यही आदत है, मैं तो नहीं बदल सकती, मेरा तो यही स्वभाव है, मैं तो ऐसे ही रहूंगी, मुझे तो भाई ऐसे ही बोलना आता है, तो परिवर्तन मुश्किल लगता है। लेकिन अच्छा, श्रेष्ठ, ऊंचा, दिव्य, ये हम सबको अच्छा लगता है। हमें नया कपड़ा पहनने को मिले, हमें अच्छा लगता है, खाने को नई नई वैरायटी मिले, अच्छा लगता है, हमारा मोबाइल रोज नया हो, हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही मेरे संस्कारों में श्रेष्ठता हो, दिव्यता हो, मेरे संस्कारों से मेरा भाग्य बने, मेरा पुण्य जमा हो। हम चाहते तो सब हैं मेरा भाग्य अच्छा हो। अगर अभी कोई पंडित जी ज्योतिषी आपको कह दे कि भाई अभी 2021 आने वाला है और 21 में जो है ना आपका भाग्य थोड़ा सा डाउन है, तो आपको अभी से ही चिंता हो जाएगी। और किसी को कह दे कि वाह 21 तो आपके लिए लॉटरी लेके आ रहा है, बहुत भाग्यवान हो, देखो हम कितने खुश हो जाते हैं। तो हमें अच्छा अच्छा कोई कहे तो अच्छा लगे, बढ़िया कहे, श्रेष्ठ कहे। तो मुझे अपने संस्कारों को क्या करना है, श्रेष्ठ बनाना है, नए संस्कारों को अपनाना है, ऊंचे संस्कारों को अपनाना है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है। तो आज से हम ये पक्का करें, मुझे अपने दिव्य संस्कार बनाने हैं, विशेष श्रेष्ठ संस्कार बनाने हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। तो मेरे संस्कार भी बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छे होने चाहिए। संस्कारों की शुरुआत कहां से है? संस्कार हमारे चिंतन से बनते हैं। हम रोज क्या सोचते हैं? जो सोचते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो संस्कार बन जाते हैं। अब मान लीजिए किसी को तो बाहर की दुनिया का आकर्षण बहुत है, वो रोज रोज क्या कर रहा है, अच्छे अच्छे कोई दुनिया वाले नॉवेल्स पढ़ रहा है, पिक्चर्स देख रहा है, कहानियां पढ़ रहा है, तो उसकी बुद्धि कहां जाएगी? उसके संस्कार वही बनेंगे। और कोई भक्ति भाव वाला है, प्रभु प्रेम वाला है, वो कहता है ये बातें दुनिया की बातों में क्या पड़ा है, हम तो दो दिन की जिंदगी लेके आए हैं, हमें अपने अच्छे श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ये पिक्चर विक्चर कुछ नहीं है, जितना प्रभु का नाम हम ले लें, जितना मंत्र जाप कर लें, वो उसी में लगा रहता है। तो शुरुआत कहां से है? मेरी जो च्वाइस है, सिलेक्शन है, संकल्प है, तो मेरी अभी च्वाइस कौन सी है? बाबा के बने हैं तो हम सबकी एक ही च्वाइस है, एक ही सिलेक्शन है, हमें अब देवता बनना है, बाबा देवता बनाने आया है, अभी हमें फरिश्ता बनना है, बाबा हमें फरिश्ता बना रहा है, यही हमारी सिलेक्शन है, यही मेरी च्वाइस है। तो जब मुझे देवता बनना है, फरिश्ता बनना है, तो मेरा चिंतन कैसे चाहिए? वो भी तो श्रेष्ठ चाहिए ना। इसलिए संस्कार श्रेष्ठ बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप है मनन चिंतन। हर घड़ी मेरा श्रेष्ठ चिंतन हो, जरा सभी चिंतन को नीचे ना आने दीजिए। हम हमेशा कहते हैं संसार में कोई भी काम न करने के लिए मनुष्य के पास हजार बहाने हैं, और करने के लिए कोई भी बहाना नहीं है। मैं आज सवेरे अमृत वेला नहीं उठी, क्यों नहीं उठी? आप देखिए कितनी लंबी लिस्ट बन जाती है। अरे रात को नींद नहीं आई, देर हो गई, अरे सर्दी है, मुझे थोड़ी ठंड लग गई, सिर में दर्द भारी था, अरे योग में तो बैठी थी लगा नहीं, यूं झुटके आ रहे थे, मैंने सोचा इससे तो बिस्तर पे ही आराम कर लूं। अब देखिए लिस्ट बना लीजिए आप, 50 से भी ज्यादा बहाने अमृत वेला ना उठने के बल लिख देंगे। और उठने के लिए कौन सा बहाना है? उठने के लिए क्या बहाना है भाई? मुझे तो आदत पड़ गई है सवेरे 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे उठना ही है। एक बार मम्मा बॉम्बे में थी, किसी वीआईपी को मिलने आना था, जो हमारे पहले रमेश भाई थे अकाउंट वाले, वो बहुत बार ये अनुभव सुनाते थे। वो वीआईपी मिलने आए तो मम्मा को रात को ही वो मिलने आने वाला था, रात को देर हो गया, 11-12 बज गया, तो कहा कि आप सवेरे तो मम्मा फिर थोड़ा आज 12 बज गया है, आराम करना, क्योंकि मम्मा तो जल्दी उठ जाती थी, कल सवेरे अमृत वेला थोड़ा 3 बजे उठना, 4 बजे उठना। मम्मा ने कहा क्यों? मम्मा आज सोने में देर हो रही है ना, तो फिर मैं उठने में, मेरा जो कर्तव्य है उसमें देर क्यों करूं? तो ऐसे नहीं मम्मा सोए, हम तो 11-12 बजे सोएंगे तो हमारा तो सीधा बहाना है कि भाई आज 11 बज गया 12 बज गया, अब मैं सवेरे तो थोड़ा आज लेट उठूंगी, मुझे उठाना मत। लेकिन मम्मा बाबा, हमारी बड़ी दीदी दादियां, हमारी बड़ी दीदी, हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है, रात को कोई कारण से प्रोग्राम से लेट भी हो गए, सवेरे देखो दीदी वही 3:30 बजे उठना, नहाना और 4 बजे एक्यूरेट छोटे हॉल में योग में पहुंच जाना सबसे पहले। कमिटमेंट है अपने कार्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए। तो मेरा लक्ष्य मेरे सामने हो, मैं देवता बनने वाली आत्मा हूं, इसलिए मेरा चिंतन श्रेष्ठ होना चाहिए। दुनिया वाला चिंतन ना रखिए। अब लॉकडाउन है, बिजनेस नहीं हुआ दो महीना 6 महीना, अब तो हमें जाना ही पड़ेगा, भागना पड़ेगा। हम तो कहते हैं लॉकडाउन ने सबको सिखा दिया कि शांति से रह के भी आप अपने घर को चला सकते हैं। चलाया ना सबने, कोई भी भूखा नहीं सोया, सबको खाने को भी मिला, बल्कि लोगों ने अच्छा अच्छा बना के खाया। वो गूगल को खोल लिया, नई नई रेसिपीज निकालते रहे, ट्राई करते रहे, बनाते रहे, खाते रहे, क्योंकि अब होटल तो बंद थे, ढाबे बंद थे, ठेले ठेलियां सब बंद थे, लोगों ने घरों में इंजॉय किया। क्या मैं अपने लक्ष्य के प्रति इतनी सचेत हूं? मेरा हर घड़ी मनन चिंतन, चाहे मेरा व्यापार है, परिवार है, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि मैं 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल व्यापार कर लूं, फिर उसके बाद तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस मैं बाबा को याद करूंगी, ऐसा तो होगा नहीं। अंतिम श्वास तक लोग अपना धंधा करते रहते हैं। तो मुझे श्रेष्ठ चिंतन करते हुए अपना धंधा, अपना व्यापार, अपना परिवार संभालना है। जितना चिंतन श्रेष्ठ, उतनी हमारी कारोबार स्मूथ होगी। पुराना मॉडल कोई गाड़ी का हो, आप लोगों को याद होगा, आगे गाड़ियां कार चलती चलती कहीं भी रुक जाती थी, फिर धक्का लगाते थे, कई बार तो चौराहे पे रुक जाती थी, वो लाल लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, लाइट 2-4 बार बदल भी, फिर पुलिस वाला ही धक्का देता था गाड़ी को कि भाई हटाओ, पीछे जाम लग रहा है। लेकिन अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, कितनी अच्छी गाड़ियां हैं, ना टायर पंक्चर होते हैं, ना रास्ते में रुकती है, कुछ नहीं। ऐसे ही मेरा व्यापार स्मूथ चले, अप डाउन ना हो, उसकी ये विधि है। मेरा चिंतन श्रेष्ठ हो। हमने धनिया अपने किचन गार्डन में लगाया है, पुदीना लगाया है, तो वही खुशबू आएगी ना धनिये पुदीने की। गुलाब लगाया तो गुलाब की खुशबू आएगी ना। मेरे चिंतन में क्या लगा हुआ है? तो अपने चिंतन को जितना श्रेष्ठ बनाएंगे, हमारे संस्कार श्रेष्ठ होंगे। तो ये है फर्स्ट स्टेप। लेकिन मेरा चिंतन श्रेष्ठ हो, सहज हो, स्मूथ हो, इसमें हार्मनी हो, उसके लिए चाहिए एकांत भाव। केवल एकांत नहीं चाहिए। चलो एकांत के लिए मेरे पास साधन है, पैसा है, मैं सोचती हूँ कि इस बार तो मैं नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग कहीं चली जाऊं, मेरा वहां मकान भी है, आराम से बैठूंगी, एकांत, कोई डिस्टरबेंस नहीं, और बस एकांत में बैठ जाऊं। बाबा कहता है एकांत होना चाहिए। अब बैठी एकांत में हूं, घूम रही हूं बॉम्बे, दिल्ली, लखनऊ, पता नहीं कहां कहां, तो एकांत ना हुआ ना। एकांत भाव चाहिए। हम चाहे भीड़ में बैठे हों, इस हॉल में बैठे हों, लेकिन मैं एकांत, एकांत माना जो बस एक को ही देख रहा है, मेरे को कौन दिखाई दे रहा है? सब लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं या मुझे एक बाबा दिखाई दे रहा है? बस एक बाबा, हर घड़ी एक बाबा, जो अर्जुन का मिसाल है, चिड़िया की आंख में, आंख के भी वो जो आंख में तारा है, बिंदु है, उसमें तीर चलाओ, तो अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है? वृक्ष। अब क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया। अब क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की आंख। अब क्या दिखाई दे रहा है? आंख का तारा। छोड़ दो तीर। मेरे अंदर इतना एकांत भाव है जो बाबा कहता है साइलेंस पावर जमा करो। हम स्वतः ही साइलेंस में चले जाएंगे। मुझे किसको देखना है? बाबा को। मैं कौन हूं? मैं बाबा की संतान। मुझे किससे लेना है? बाबा से। मैं किसकी हूं? बाबा की। मेरा कौन? बाबा। दादी जानकी हमेशा कहती थी ना, मैं कौन मेरा कौन। तो हम लोग हंस देते थे कि दादी हर क्लास में ये पाठ पक्का कराएगी, मैं कौन मेरा कौन। ये एकांत भाव जब हमारे अंदर हो तो हमारे अंदर साइलेंस पावर अपने आप जमा होगी। पिछले दिनों आपने कई साकार अव्यक्त मुरलियां सुनी होंगी। बाबा ने कहा बच्चे एकांत में। अब एकांत में कहां जाएंगे? कोई सागर के किनारे जाके नहीं बैठना है, पहाड़ों पर नहीं बैठना है, अपने अंदर एकांत भाव जागृत करना है। जितना एकांत भाव उतनी एकाग्रता और उतनी मेरी स्मृति श्रेष्ठ, जितनी स्मृति श्रेष्ठ उतने मेरे संस्कार श्रेष्ठ। तो पहला स्टेप मनन चिंतन, दूसरा स्टेप एकांत भाव। भीड़ में भी, लोगों में भी, कारोबार में भी, परिवार में भी रहते हुए बस बाबा एक मेरा साथी है। दुनिया में बहुत से मिसाल सुनते सुनाते आए हैं ना, काम करते हुए भी हीर रांझा, काम कर रहे हैं, दूर दूर हैं, लेकिन वो बस हीर को रांझा, रांझा को हीर ही दिखाई दे रही है। हम कहीं भी हैं, मुझे बाबा दिखाई दे और बाबा को मैं दिखाई दूं। बाबा तो कहता है तुम मेरे नैनों के नूर हो। लेकिन हम नैनों के नूर क्या करते हैं? भागते रहते हैं बाहर। बाबा बार बार कहता है बच्चे मैं तुम्हें पलकों पे बिठा के ले जाता हूं। हम कहते हैं हम अपने आप ही उड़ जाएंगे, हम बैठते ही नहीं है, हम तो और कुछ ढूंढते रहते हैं। अपने भीतर एकांत भाव में जाओ बस। अभी आप सब मधुबन में आए हैं ना, ड्रामा अनुसार देखो पहले कितनी भीड़ होती थी, 25,000-30,000, उसमें भी अपना आनंद था, बड़े खुश होते थे। हमारे ग्रुप में कितने आए हैं भाई? 25,000, हमारे में 15,000, हमारे में 30,000। अरे इतनी भीड़, और सबसे मिलते थे ओम शांति ओम शांति। लेकिन अब बाबा के घर में कौन आए होंगे? पुराने भी आए हैं, नए भी आए हैं, लेकिन कौन आए हैं? जिनके अंदर बहुत लगन रही होगी, नहीं नहीं हम तो बाबा के घर जरूर जाएं। नहीं तो बहाने तो सबके पास हैं, कोविड है, हमारे बच्चे जाने नहीं देते, बच्चे सेंटर पे ही नहीं आने देते, मधुबन की तो बात ही दूर है। तो हम जो थोड़े से आए हैं, हम वो भाग्यवान आत्माएं हैं जो अपना पुण्य जमा करने आई हैं। बाबा ने हमें चांस दिया है, बच्चे पुण्य जमा करो। तो एक ही लक्ष्य रखना है, मेरा एक भी सेकंड, एक भी संकल्प वेस्ट नहीं जा सकता। हर श्वास के साथ बाबा मेरा है, बाबा मेरा है, मैं बाबा की। ये हमारा एकांत भाव, एकांत नहीं, एकांत भाव खाते पीते चलते फिरते, ये जो बाबा ने हमें 3 दिन दिए हैं, 4-5 दिन दिए हैं, इनमें हमें यही पुरुषार्थ, इसी लगन में लगना है। यहां से अपना ये संस्कार बना के जाना है। कौन सा संस्कार? बस मुझे बाबा के साथ रहना है, न खाना खा रही हूं तो भी बाबा के साथ, जा रही हूं बाबा के साथ। हम लोग जाते हैं ना, यहाँ हॉल से निकलेंगे पहले तो खड़े होंगे तो एक दो को देखेंगे, मेरे कमरे में ये बहन रहती है, आजा भाई चलें, फिर चलते हुए बातें कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, फिर वो उधर कोई जा रहा है, ओम शांति। हमने मम्मा बाबा को देखा, मम्मा को देखा, क्या मम्मा की चाल थी। मम्मा चलती थी ना बस नह नह से, इधर उधर देखने का तो सवाल ही नहीं है। चाहे बच्चे साथ में होंगे, 10-15 भाई बहन साथ में होंगे, लेकिन मम्मा 15 में भी जैसे एकांत में। हमें मम्मा का वो चेहरा वो चाल याद आती है, मम्मा कैसे चलती थी, बस नए नए से सामने, बस अपने जैसे, मम्मा कहीं और है, यहां नहीं है। और हम तो पता नहीं कितनी बातें करते हुए, अरे हाँ हमारे वहां ऐसा हो गया, हमारी कॉलोनी में ऐसा हुआ, हमारे घर में ऐसा हुआ, हमारे एक दूसरे के साथ, एक कहेगा मेरा फलाना बीमार, दूसरा कहता अरे हमारे यहाँ तो 4 लोग और बीमार थे। ये भी जैसे कंपटीशन है। नहीं, अभी आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन यहाँ रहेंगे, एकदम मौन में रह के देखो। मौन माना वो मौन नहीं मैं कहती आपको कि बस बोलना ही नहीं है, मौन माना एकदम अंतर्मुखी, बस मुझे बाबा के साथ। जैसे अपन मोबाइल चलाते हैं ना, कहते मेरा भाई यहां नेट वीक है इसलिए नंबर लग नहीं रहा, तो हम अपने नेट को पावरफुल बनाएं, हमारा नंबर बाबा के साथ लगा रहे। कोई हटाना भी चाहे ना तो हटे नहीं, इतना अपने नेट को पावरफुल बनाएं। ये है एकांत भाव, फिर स्वतः एकाग्रता होगी। फिर ये नहीं पूछेंगे आप, बहन जी बहुत संकल्प चलते हैं, बहन जी मैं बीमार रहती हूं ना तो मन बार बार उधर जा, ये सब बातें हैं और रहेंगी, बीमारियां भी रहेंगी। अब कई बार भाई बहन कई नए लोग जब आते हैं तो कहते हैं, कहते बस खतरा तब तक है जब तक वैक्सीन नहीं आ गया, वैक्सीन आ जाएगा ना फिर कोविड से कोई खतरा नहीं। अरे वैक्सीन आएगा, कोविड तो नहीं जाएगा ना, वो तो रहेगा, सिर्फ आपको तसल्ली है कि अब वैक्सीन आ गया वो लगवा लेते हैं, बीमारी तो वहीं की वहीं है, कैंसर तो वहीं का वहीं है, उसकी दवाइयां तो बहुत निकल आई है, दवाई है, बीमारी तो नहीं भागी ना। तो अभी हमें अंदर में महसूस करना है, ये महापरिवर्तन का समय है। इस महापरिवर्तन के समय में आप ये न सोचें बाबा के बच्चे कि हाँ अब ये तो साल गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, बस अगले साल से अच्छा हो जाएगा। बुरा नहीं मानना मीठे भाई बहनों, अगले साल अच्छा कुछ नहीं होने वाला है, इससे भी खराब होने वाला है, ये मैं आपको बता देती हूं। आप जीवन को देखिए, उम्र बढ़ती है ना, पहले तो छोटा बच्चा है पैदा हुआ, फिर वो थोड़ा बैठना सीखता है, फिर वो थोड़ा सा ऐसे दोनों हाथ पांव से चलता है, फिर थोड़ा बड़ा होता, हम बहुत खुश होते हैं अब ये बड़ा हो रहा है, माँ बाप भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं, फिर वो स्कूल जाने लगता है बहुत खुश होते हैं, वही बच्चा फिर धीरे धीरे बड़ा होते होते कुछ बन भी जाता है, डॉक्टर इंजीनियर दुकानदार ऑटो चालक, कुछ ना कुछ तो बनता ही है, बहुत खुश होते हैं, अब इसकी शादी भी हो गई घर बन गया, बहुत खुश होते हैं। फिर अब धीरे धीरे कहानी कहां से शुरू होती है, अब क्या हो गया, मेरे दांत में दर्द हो गया, फिर एक दांत में दर्द होता है, डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर क्या होता है, अनुभवी है ना। फिर धीरे धीरे आज एक दांत ठीक कराओ, कल दूसरा कराओ, थोड़े दिन बाद दूसरा कराओ, फिर कुछ दिन बाद तो वो कहता है ये दांत खराब हो गया, सड़ गया, इसको निकाल दो। तो एक दांत ठीक कराने से दांत ठीक हुए, फिर कुछ समय बाद अब दिखाई नहीं देता, ऐनक लगी। पहले तो ऐनक दूर की थी, कहीं दूर का नहीं दिखाई देता। फिर उम्र बड़ी होते 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 42-50 के आसपास आते, कहते अब नजदीक का भी नहीं पढ़ा जाता। फिर पहले दूर का चश्मा था, अब कौन सा हो गया, अब डबल हो गया, अब नजदीक का भी हो गया। तो आप बताइए बेटर हुआ क्या। हमें कुछ ना कुछ साधन मिलते गए, जैसे वैक्सीन भी साधन है, लेकिन शरीर तो डिट्यूरिएट हो रहा है, नीचे ही नीचे गिर रहा है, शरीर तो ठीक नहीं हो रहा ना। फिर थोड़े समय बाद कहते हैं अब इसको पेट में प्रॉब्लम है, अब इसको हार्ट में प्रॉब्लम है, अब किडनी की प्रॉब्लम है, अब लीवर की प्रॉब्लम है। लेकिन आपको अगर ठीक रहना है तो क्या करना होगा। कोई तो कहते हैं कोई बात नहीं, मरना है तो खा पी के मरे, ऐसी भी सोच वाले लोग हैं, वो कोई परहेज नहीं करते, गोलियां 10 खाएंगे 10 से 20 भी कर लेंगे। और कोई कहते हैं नहीं नहीं ठीक रहना है, वो खाने पीने पे ध्यान देते हैं, नेचर की ओर में जाते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम सोचें अब 2021 अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा। ये महापरिवर्तन का समय शुरू हो चुका है, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाना है। अब ये देखना है मेरी मानसिक स्थिति मजबूत हुई कि नहीं हुई। मैं एकांतवासी, एकांत भाव वाली आत्मा, एकाग्रचित आत्मा, एकदम साइलेंस में रहने वाली आत्मा, तब हमारे संस्कारों में श्रेष्ठता आएगी। तो सबसे पहले मनन चिंतन श्रेष्ठ करें, एकांत भाव वाले बने, मन बुद्धि को एकाग्र करें, और फिर मन बुद्धि की एकाग्रता के साथ साथ एकदम एकाग्र चित्त और एकाग्र चित्त होकर अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाएं, अपने अंदर साइलेंस पावर। महापरिवर्तन के समय पर मैं अपने अंदर कितनी साइलेंस में रह सकती हूं, अब हर घड़ी ये देखना है। कर्म करते साइलेंस में, जब पहले बाबा साकार में थे और बाबा बच्चों से मिलते थे, कई भाई बहन, कई परिवार वाले अपने साथ छोटे बच्चों को भी ले आते थे, तो साकार में बाबा जब रात्रि क्लास में आते थे तो बहुत से भाई बहन, कोई कविता लिखने वाला होता था तो बाबा के आगे कविता सुनाते थे, कोई गीत गाने वाला था तो गीत गाते थे, कोई बच्चे कुछ तैयार करके लाते थे तो वो करके दिखाते थे। फिर हमने देखा धीरे धीरे बाबा जैसे जैसे आगे 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 बढ़ते गए, फिर कोई कहते थे ना बाबा के आगे गीत गाएं, ड्रामा करें। आप कई बार मुरलियों में सुनते होंगे बाबा कहते नहीं बच्चे आवाज से परे चलो। बाबा को फिर वो गीत कविताएं भी बच्चों का मन रखने के लिए कह देते थे, हाँ बच्चे सुनाओ, लेकिन फिर बाबा को तो साइलेंस खींचती थी। बाबा कहता था बच्चे आवाज से परे चलो। हमें क्या खींच रहा है, साइलेंस खींच रही है या दुनिया के आकर्षण, दुनिया की बातें वो खींच रही है। अपने भीतर में हम जाएं, उतर जाएं। तो संस्कार परिवर्तन मुश्किल नहीं है, मौन रखना मुश्किल नहीं है। यूं मैं आपको कहूं ना, अभी 5 दिन मौन में रहना, तो आप बाहर जाएंगे ना, देखेंगे बहन जी तो नहीं है ना, कोई देख तो नहीं रहा, तो आपस में 2-4 लोग बात, धीरे कहेंगे धीरे बोलो भाई आज मौन है, पर बोलेंगे जरूर, लेकिन जितना हम अपने भीतर उतरेंगे तो कोई बुलाएगा भी ना, उसको शॉर्ट में जवाब देंगे, कोई कहेगा ये बात ऐसे ऐसे, कहेंगे हाँ ये वहां ऐसे कर लो, बस लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। तो हम ये देखें, हम साइलेंस की ओर जा रहे हैं या साउंड की ओर जा रहे हैं? साइलेंस की ओर हमारा आकर्षण स्वतः हो, ये है मौन की शक्ति। एक है मौन, एक है मौन की शक्ति। मेरी आत्मा अपने आप मौन को प्रेफर करे, नहीं तो कोई तो अकेले अकेले कहते अरे बोर हो गए, इससे तो टीवी चलाओ, कोई चलो पीस ऑफ माइंड ही चला लो, कोई ना कोई क्लास आ जाएगी, कोई ना कोई मधुबन का प्रोग्राम आ जाएगा, उसी में हम आवाज, मन किस में लगा हुआ है? आवाज में। अकेले बैठे बैठे अभी क्या करें, कोई काम धंधा नहीं है, टीवी चला लो, तो आवाज हमें अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन अरे बहुत अच्छा है, चलो अभी काम धंधा तो है नहीं, लॉकडाउन है, बाबा को याद करते हैं, बाबा की मुरलियां पढ़ते हैं, आज तो मैं दिन में कुछ भी हो 3 मुरलियां पढ़ूंगी, चाहे साकार चाहे अव्यक्त, तो कहेंगे मुझे साइलेंस का आकर्षण है, नहीं तो आवाज का आकर्षण है। तो अपने अंदर साइलेंस पावर को भरें, साइलेंस में नहीं रहना है, पावर को भरना है, साइलेंस पावर। तो साइलेंस पावर के लिए ये 2 प्रकार का पुरुषार्थ है। पहला प्रकार हुआ हमने मनन चिंतन किया, एकांत भावी बने, एकाग्रचित हुए, स्मृति को श्रेष्ठ बनाया, ये हम कर रहे हैं। दूसरा तरीका है साइलेंस पावर को धारण करने का, योग में बैठे मैं परम धाम में जाकर बैठ गई, बस शिव बाबा के सामने मैं भी बिंदु बन के बैठी हूं। अभी 1-2 दिन पहले जो बाबा की मुरली थी, पास्ट इज पास्ट, अब तो बाबा मुझे देवता बना रहा है, फरिश्ता बना रहा है, मैं बाबा को देख रही हूं, मैं परम धाम में बैठी हूं, बाबा मुझे शक्तियां दे रहे हैं। तो जितना हम पहले ये इसको कहेंगे एकदम साकार का स्थूल पुरुषार्थ, मनन चिंतन करूं, लिखूं, एकांत में रहने का अभ्यास करूं, स्मृति को श्रेष्ठ बनाऊं, फिर सूक्ष्म अभ्यास, मैं साइलेंस पावर की ओर अपने आप बढ़ती जाऊं, जिसको हम कहते हैं योग में साइलेंस में बैठो। तो पहले ये फिर ये, इससे हमारे अंदर इतनी शक्ति आएगी, फिर हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हमारे संस्कार स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाएंगे। अपन योग से उठेंगे तो क्या करेंगे, बोलेंगे तो धीरे ही बोलेंगे ना, जोर से थोड़ी बोलेंगे, कोई बात हो भी जाएगी कहेंगे अच्छा ठीक है, और अगर हम योग में नहीं है वैसे कहें अरे क्या हो गया, क्या बोलते हो, देखो कैसी आवाज कैसा टोन। तो अपने लक्ष्य को सामने रखकर अब क्या करेंगे सब, अभी जो मधुबन में 4-5 दिन रहना है ना, पहले पहला पुरुषार्थ ये है, बस मैं एकांत भाव में रहूं, फलाने से मिलूं फलाने से मिलूं नहीं, बस। अब तो देखिए इस कोविड ने हमें क्या सिखा दिया है, क्या सिखाया, मिलो कहते हैं नहीं दूर से ही मिलो, बच्चे देखो कितने ट्रेंड हो गए हैं, सेंटर पर एक बच्चा आया, हमने कहा हेलो, हाथ ऐसे किया, वो कहता है नहीं, छोटे छोटे बच्चों को ये पता है कि हाथ नहीं मिलाना है, कहते हैं नहीं। तो हमें सिखा दिया ना कोविड ने, क्या करो, दूर रहो, है अपने से भी दूर और अपनों से भी दूर, सबसे दूर। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंध भूलो, अपने से दूर माना देह को भूलो, अपनों से दूर देह के संबंधों को भी भूलो। अब हम बाबा की नहीं मानते हैं, हमें ये प्रकृति सिखा रही है, कोविड सिखा रहा है, फिर भी हमारी मर्जी है। बाबा तो बार बार किसी ना किसी तरीके से हमें स्मृति दिला रहा है, हम नहीं ला रहे हैं स्मृति में, फिर तो हमारी मर्जी ना। बाबा कहता मैं बहुत समझाता हूं, फिर आपकी तकदीर, फिर तो कहेंगे अपनी तकदीर। तो अभी 5 दिन में हम बिल्कुल जिन की तरह लग के एकांत भावी बनने का पूरा पुरुषार्थ करें, तो संस्कार अपने आप बदल जाएंगे। संस्कारों की मत सोचो, मेरे में आलस है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरे अंदर में इच्छाएं बहुत हैं, कोई बात नहीं, मुझे अभी एकांतवासी बनना है, एकांत भावी बनना है, बाबा का बनना है, बाबा के साथ रहना है, ये लगन लगाए। ठीक है, तो ये 4-5 दिन हम इसी पुरुषार्थ में सफल करें। और बाबा के घर में आए हैं, जिसको हम कहते हैं ये वरदान भूमि है, तपो भूमि है, इस वरदान भूमि तपो भूमि से हम बाबा से ये वरदान लेके जाएं। बस अब मैं साइलेंस में हूं, साइलेंस पावर मेरे में है, मैं बाबा के साथ हूं और मेरे संस्कार श्रेष्ठ संस्कार है। तो हम खुद भी खुश रहेंगे, औरों को भी खुश रखेंगे, खुद भी संतुष्ट रहेंगे, औरों को भी संतुष्ट करेंगे। संगम युग की घड़ियां बाबा का वरदान है, बच्चे मौज में रहो और मौज मनाओ। तो यही है मौज, मौज के लिए कहीं बगीचों में जाने की जरूरत नहीं है, खर्चे की जरूरत नहीं है, कोई 2-4 के साथ चलो चलो आज पिकनिक करके आए, ये जरूरत नहीं है। संगम युग की मौज में एक मैं एक मेरा बाबा, कोई मिले भी बोले भी कहे ओम शांति ओम शांति, क्या हो कैसे हो ठीक हो, ये तो कॉमन बात, कॉमन मनुष्य भी कर रहा है, हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं। कैसे हो दिखाई दे रहा है भाई, कैसे हो ठीक हो तो आप यहां आए हो, इसलिए क्या है कैसे है ये मत करो, ओम शांति ओम शांति। अपने अंदर तीव्र पुरुषार्थ की लगन की अगन जगाएं। ठीक है, तो संस्कार परिवर्तन सहज है मुश्किल है, सहज है ना, अपने श्रेष्ठ चिंतन में लग जाए। तो चलो अभी हम साइलेंस की ओर चलते हैं, अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठे, अलर्ट होके बैठो, सीधा होके, सुस्ती से ना बैठो, जरा भी अपने आप को टेक ना दो। मान लो थोड़ा आलस आ भी जाता है ना कभी, फिर हम ऐसे हो जाते हैं, ऐसे होके बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठो, और ही अपने को अलर्ट करो, नहीं, हम बाबा की वरदान भूमि में बैठे हैं, वरदाता बाबा के आगे बैठे हैं, चलो बाबा के सामने चलें। पास्ट इज पास्ट, अब मेरा हर क्षण हर श्वास बाबा के लिए है, मैं शुद्ध शांत आत्मा शांति के सागर बाबा से शांति और पवित्रता की शक्ति लेकर एकदम शक्तिशाली सदा के लिए स्वस्थ और प्रसन्न हो गई हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शांति धाम की रहवासी हूं, शांति के सागर बाबा की संतान, शांति के सागर बाबा की छत्र छाया में भाग्यवान श्रेष्ठ आत्मा, इसी समृद्धि को पक्का करें और शक्तिशाली बने, शक्तियों को महसूस करें।